ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राजनीतिक स्थायित्व, विकास और सुशासन के माध्यम से देश को समृद्धि की ओर ले जाने की बात पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने दिया जोर। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सिफारिश में बागमती, लुम्बिनी और कर्नाली प्रदेशों के प्रमुख नियुक्त। संक्रमणकालीन न्याय और शांति प्रक्रिया के बाकी बचे कामों को पूरा करने के लिए सभी को मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है, उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु पौडेल का कथन। और हमास के शीर्ष नेता इस्माइली हानिया की तेहरान में कर दी गई हत्या। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने बागमती, लुम्बिनी और कर्नाली प्रदेशों के प्रदेश प्रमुख नियुक्त किए हैं। मंत्रिपरिषद के निर्णय एवं सिफारिश में नेपाल के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति पौड़ेल ने बागमती प्रदेश प्रमुख पद पर कैलाली के दीपक प्रसाद देवकोटा, लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख पद पर रोलपा के कृष्ण बहादुर घरती मगर और कर्नाली प्रदेश प्रमुख पद पर बझांग के यज्ञराज जोशी को नियुक्त किया है। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराय द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लिखित है। इससे पूर्व राष्ट्रपति पौड़ेल ने बागमती के प्रदेश प्रमुख यादव चंद्र शर्मा, लुम्बिनी के प्रदेश प्रमुख अमित शेरचंद और कर्नाली प्रदेश के प्रमुख तिलक परियार को आज ही मंत्रिपरिषद के निर्णयों एवं सिफारिश में नेपाल के संविधान के मुताबिक पदमुक्त किया। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में उल्लिखित है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता, विकास और सुशासन के जरिए देश को समृद्धि की राह पर ले जाना चाहिए। आज राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में दिल्ली रमण कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालय विकास समिति द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में राष्ट्रपति पौड़ेल ने सभी को देश और लोगों के लाभ के लिए अपनी क्षमताओं को समर्पित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। राष्ट्रपति पौड़ेल ने कहा कि शांति, अहिंसा, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के समर्थक डॉ रेग्मी का योगदान नेपाल में शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणादायक है और ये उन्हें हमेशा प्रेरित करता रहेगा जो अच्छे काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि डॉ दिल्ली रमन रेग्मी ने कहा कि हर किसी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि उन्होंने देश की भलाई के लिए अपनी पूरी संपत्ति सरकार को सौंपी है। समारोह में राष्ट्रपति पौड़ेल ने वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल को डॉ दिल्ली रमन रेग्मी राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2080 से सम्मानित किया। वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल को 1,00,000 रूपये राशि और सम्मान पत्र सहित डॉ दिल्ली रमन रेग्मी राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2080 प्रदान किया गया है। इसी तरह डॉ दिल्ली रमन रेग्मी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2080 से जापानी सहयोग नियोग जायका को सम्मानित किया गया। समारोह में राष्ट्रपति पौड़ेल ने नेपाल की शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में जायका के सहयोग की सराहना की। सरकार ने नेपाली सेना के बलाधिकृत रथी अशोक राज सिगदेल को कायम मुकायम प्रधान सेनापति की जिम्मेदारी तय करने की सिफारिश की है। श्रावण 14 गति सोमवार हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए आज सिंह दरबार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि इसी श्रावण 25 गति से लागू होने के हिसाब से बलाधिकृत रथी सिगदेल को कायम मुकायम प्रधान सेनापति की जिम्मेदारी देने की राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश करने का निर्णय बैठक ने किया है। इसी तरह बैठक ने चिकित्सा शिक्षा आयोग और शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय अंतर्गत के निकायों में 59 और महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय अंतर्गत के कार्यालयों और कार्यक्रमों के लिए राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी व उसी तरह 11 स्थायी दरबंदी स्वीकृत करने का निर्णय किया है। इसी तरह बैठक ने चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका में कार्यरत नेपाली आवासीय राजदूतों को 15 दिनों के भीतर नेपाल वापस बुलाने, विभिन्न 18 देशों के लिए आवासीय नेपाली राजदूत नियुक्ति के लिए सिफारिश करने तथा विभिन्न 22 नेपाल सरकार के राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी के अधिकृत सचिवों का तबादला करने का निर्णय किया है। ये जानकारी मंत्री गुरुंग ने दी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल के आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों को लाकर मदद करने का स्विस सरकार से अनुरोध किया है। आज प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में नेपाल के लिए स्विट्जरलैंड के राजदूत डेनियल मेउली मोन्टेलोन से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि नेपाल के विकास के लिए वैदेशिक सहयोग उत्प्रेरक बनेंगे। उन्होंने समावेशी लोकतांत्रिक ढांचे के विकास के लिए स्विट्जरलैंड की अभ्यास स्थापित होने का जिक्र किया। आगे उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार लोकतंत्र को मजबूत करने और राज्य ढांचे को निचले स्तर पर लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री ओली ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने की सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए हाल ही में संपन्न नेपाल निवेश सम्मेलन में 50 देशों के उत्साहपूर्ण भागीदारी का उल्लेख किया। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादी ने केंद्रीय कमेटी को पूर्णता देने के लिए अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल के संयोजकत्व में 3 सदस्यीय कार्यदल का गठन किया है। इसी तरह बैठक में देश के समसामयिक राजनीतिक विषयों की समीक्षा के साथ ही पार्टी की भावी कार्ययोजना के विषय में विचार विमर्श हुआ। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष का जमघट कल और परसों काठमांडू में होने वाली है। जमघट में 77 जिलों के जिला अध्यक्ष अपने जिलों का सांगठनिक प्रतिवेदन पेश करेंगे। ये जानकारी पार्टी के प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठ ने दी। उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौर्य ने कहा कि संक्रमणकालीन न्याय और शांति प्रक्रिया के बाकी बचे कामों को पूरा करने के लिए सभी को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। आज ललितपुर में अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केंद्र द्वारा आयोजित 32वें प्रकाश स्मृति दिवस और 30वें प्रकाश मानवाधिकार पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में उप प्रधानमंत्री पौडेल ने विचार व्यक्त किया कि सरकार का स्पष्ट मानना है कि मानवाधिकारों के बिना कोई लोकतंत्र नहीं है और सरकार इसकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि इस अवसर पर पिछले वर्ष का 29वां प्रकाश मानवाधिकार पुरस्कार कपिलवस्तु की रुकैया खातून को दिया गया है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि रेडियो नेपाल को एक राष्ट्रीय माध्यम के रूप में विस्तारित किया जाना चाहिए जिसे हर कोई सुन सके। रेडियो नेपाल सिंह दरबार में आज आयोजित स्वागत कार्यक्रम में संचार मंत्री गुरुंग ने कहा कि रेडियो नेपाल को अपने प्रसारण को समृद्ध बनाना चाहिए और विज्ञान एवं प्रविधि के उन्नत साधनों के साथ प्रतिस्पर्धा करके खुद को राष्ट्र की एक मजबूत प्रसारण संस्था के रूप में स्थापित करना चाहिए। सरकार के प्रवक्ता भी रहे मंत्री गुरुंग ने कहा कि रेडियो के विकास और सुधार के लिए समय पर कानूनी नीतिगत सहयोग करने के लिए सरकार तत्पर है। संचार मंत्री गुरुंग ने रेडियो को आर्थिक रूप से मजबूत रखने और लोगों को सूचित करने की भूमिका में जिम्मेदारी भूमिका निभाने का संबंधित निकायों संगठनों तथा कर्मचारियों सभी को जिम्मेदार होकर अपनी भूमिका निभाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में रेडियो नेपाल के निमित्त कार्यकारी निदेशक खगेन्द्र खत्री ने रेडियो नेपाल की अतीत और वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि रेडियो नेपाल अपनी प्रसारण सामग्री को सार्वजनिक प्रसारण सेवा प्रारूप में परिवर्तित करके आगे बढ़ चुका है। कार्यक्रम में रेडियो नेपाल के नायब कार्यकारी निदेशक चंद्रभूषण लाल दास ने कहा कि रेडियो नेपाल अपने प्रसारण पहुंच को देश के सभी हिस्सों में पहुंचाने में क्रियाशील है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हमास ने कहा है कि उसके शीर्ष नेता इस्माइल हनिया ईरान की राजधानी तेहरान में मारे गए हैं। बुधवार को हमास ने बयान जारी कर कहा है कि तेहरान स्थित हनिया के आवास पर इसराइल ने हमला किया और इस हमले में वो मारे गए। इस हमले की अब तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। इस बारे में अभी तक इसराइल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, मगर वहां से एक इजरायली मंत्री की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इसराइली डिफेंस फोर्स ने भी हनिया की मौत पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हमास के मुताबिक हनिया इसराइल के नए राष्ट्रपति मसूद पेसेशकियान के पदभार ग्रहण करने के समारोह में शामिल होने तेहरान आए थे। हनिया कतर में रहते थे। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी मूसा अबू मरजोक ने इस हमले को कायराना हरकत बताते हुए बदला लेने की बात कही है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राजनीतिक स्थायित्व, विकास और सुशासन के माध्यम से देश को समृद्धि की ओर ले जाने की बात पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने दिया जोर। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सिफारिश में बागमती, लुम्बिनी और कर्नाली प्रदेशों के प्रमुख नियुक्त, संक्रमणकालीन न्याय और शांति प्रक्रिया के बाकी बचे कामों को पूरा करने के लिए सभी को मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु पौड़ेल का कथन और हमास के शीर्ष नेता इस्माइली हनिया की तेहरान में कर दी गई हत्या। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।